ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। ग्यारहवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल पूरे देश और दुनिया भर में उत्साह और भागीदारी के साथ मनाया गया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अलग अलग योग सत्रों में शामिल होकर कार्यक्रम का नेतृत्व किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल देहरादून के पुलिस लाइन में आयोजित योग शिविर में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने वैश्विक मंच पर योग को बढ़ावा देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
योग अभ्यास करने से व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ती है। योग के अनेक प्रशिक्षण प्राणायाम एवं योगासन की उपयोगिता बताते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि किस प्रक्रिया को करने से किन किन रोगों का प्रतिरोध हो सकता है। आजकल जीवनचर्या से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम में भी योग चिकित्सा को उपयोगी माना जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। इस मुख्य योग दिवस कार्यक्रम में लगभग 2,72,000 लोगों ने भागीदारी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विश्व के विभिन्न भागों में तनाव अशांति और अस्थिरता की स्थिति है, ऐसे में योग मानवता को शांति का मार्ग प्रशस्त करता है।
आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही, कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है, ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है।
गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित देश के सभी भागों में योग दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के लेख को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि महिला और बाल कल्याण नीतियों में योग को शामिल करने से पूरे देश में जमीनी स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा मिल रहा है। अपने लेख में श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि गर्भावस्था से पहले और बाद में योग अपनाने से महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद मिलती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि कभी बहाल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार पाकिस्तान में जा रहे अतिरिक्त पानी को राजस्थान ले जाने के लिए नहर का निर्माण करेगी। एक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में गृह मंत्री ने कहा कि सरकार की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति बरकरार है। श्री शाह ने कहा कि सरकार कश्मीर, नक्सल क्षेत्र और पूर्वोत्तर में आतंकवाद के मूल कारणों को दूर करने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में निवेश करने का एकमात्र सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा स्थान है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसकी नीतियां पारदर्शी हैं और ये एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है। श्रीलंका ने ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत ईरान से भारतीय नागरिकों के साथ श्रीलंका के नागरिकों की वापसी में समय से मदद करने के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि एकजुटता का ये कार्य भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत और स्थायी भागीदारी का महत्वपूर्ण उदाहरण है और श्रीलंका की जनता इसके लिए भारत की सराहना करती है। प्रशांत महासागर के ऊपर अमेरिका के स्टेल्थ बम वर्षक विमानों के उड़ान भरने से ये अटकलें तेज हो गई हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के परमाणु ठिकानों पर इसराइल के हमले में शामिल होने का विचार कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष में अमरीकी सेना के प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने के बारे में 2 सप्ताह में फैसला करेंगे। इस बीच इसराइली बलों ने कल ईरान के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित बंदर अब्बास शहर पर नए हमले किए। बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा वाणिज्यिक शहर है और यहां कुछ प्रमुख बंदरगाह, नौसेना मुख्यालय और हार्मुज जल डमरू मध्य के पास महत्वपूर्ण तेल बुनियादी केंद्र हैं। यहीं से विश्व के 20% तेल का व्यापार होता है। ब्राजील में कल रात दक्षिणी राज्य सांता कैटरीना के प्राया ग्रांड में गर्म हवा के गुब्बारे में हुए विस्फोट में 8 लोगों की मृत्यु हो गई। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स के हेडिंगले में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है। भारत के पहली पारी के 471 रन के जवाब में मेजबान इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 209 रन बनाए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।